नमस्कार, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं।
जी हाँ, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही जानी मानी पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी।
हाँ, और इस पुस्तक की भी एक खास अध्याय पर हमारा ध्यान रहेगा जिसका शीर्षक है नारी को साथ लिए बिना प्रगति अधूरी।
बिल्कुल, और हमारा इरादा है कि हम वंदनीय माता जी के विचारों को समझें कि क्यों वो मानती थीं कि समाज की, राष्ट्र की उन्नति के लिए स्त्री की भूमिका अनिवार्य है, निर्णायक है।
सही बात है, ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अच्छा, तो वो शुरुआत कहाँ से करती हैं? पहला तर्क क्या है उनका?
देखिए, वंदनीय माता जी बहुत बुनियादी बात से शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि भाई, नई पीढ़ी कहाँ से आती है?
माँ के गर्भ से।
हाँ,
ये तो है।
और घर परिवार का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसे बनाने वाली मुख्य रूप से कौन होती हैं?
महिलाएं।
मतलब घर ही पहली पाठशाला है एक तरह से। बिल्कुल, और वो कहती हैं कि संस्कार, स्वभाव, चरित्र, इन सब की जो पहली ट्रेनिंग होती है ना, वो घर की पाठशाला में ही मिलती है, और इसका संचालन, इसकी जिम्मेदारी ज्यादातर स्त्रियों के हाथ में होती है।
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्त्री खुद सक्षम हो तो।
हाँ, यहीं पर वो सुसंस्कृत और सुविकसित नारी की बात करती हैं। अगर नारी स्वयं में नैतिक रूप से मजबूत है, जानकार है, सकारात्मक है, मतलब सुसंस्कृत और सुविकसित है, तो सोचिए घर का माहौल कैसा होगा।
हाँ, वो कहती है कि ऐसा परिवार फिर स्वर्गीय वातावरण वाला बन सकता है ना, जैसे कोई कल्प वृक्ष।
जी बिल्कुल, कल्प वृक्ष जिसके छाया में सब सुकून पाए, फले फूले। ये आदर्श लगता है सुनने में, पर इसके पीछे एक ठोस तर्क है।
क्या तर्क है? मतलब ये स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा कैसे?
ये जुड़ा है परिवार के भावनात्मक और नैतिक स्वास्थ्य से। वंदनीय माता जी का साफ मानना है कि घर में जो प्यार है, आपसी समझ है, अनुशासन है, ये काफी हद तक स्त्री के अपने स्वभाव, अपने व्यवहार पर निर्भर करता है।
अच्छा,
और इसी से जुड़ा है उनका वो नर रत्न वाला विचार। वो कहती हैं कि एक परिष्कृत पारिवारिक वातावरण से ही, मतलब एक बेहतर सुलझे हुए माहौल से ही बहुमूल्य नर रत्न निकलते हैं।
नर रत्न, ये शब्द बड़ा गहरा है। इसका मतलब क्या सिर्फ कामयाब पुरुषों से है?
नहीं नहीं, यहाँ नर रत्न का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं और सिर्फ कामयाबी नहीं, उनका मतलब है चरित्रवान, जिम्मेदार, मानवीय मूल्यों वाले इंसान, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। ऐसे लोग जो सच में देश और समाज को कुछ अच्छा देते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं।
समझ गया, जैसे अच्छी खान से ही हीरा निकलता है, वैसे ही अच्छे पारिवारिक माहौल से ऐसे चरित्रवान व्यक्तित्व निकलते हैं। ये बात तो सोचने लायक है।
जी, और फिर वो एक और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ठोस तर्क देती हैं।
हाँ, कौन सा?
जनसंख्या का। वो याद दिलाती हैं कि भाई, नारी इस देश की आधी आबादी है। सीधा सा गणित है।
हाँ, ये तो है, आधी आबादी।
तो सोचिए, अगर ये आधा हिस्सा, समाज का 50% हिस्सा कमजोर रह जाए, अशक्त रह जाए, पीछे रह जाए, तो क्या होगा?
जाहिर है, फिर पूरी प्रगति कैसे होगी? आधा शरीर कमजोर हो तो पूरा शरीर कैसे चलेगा?
बिल्कुल यही बात वंदनीय माता जी इसे एक गाड़ी के दो पहियों के उदाहरण से समझाती हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये।
हमें भी पढ़ा है कि समाज एक गाड़ी है और नर नारी उसके दो पहिए हैं।
जी, और गाड़ी तभी ठीक चलेगी, आगे बढ़ेगी, जब दोनों पहिए बराबर मजबूत हों और साथ साथ चलें। अगर एक पहिया, मान लीजिए नारी वाला पहिया, कमजोर है या जाम हो गया है,
तो दूसरा पहिया कितना भी जोर लगा ले, वो बोझ उसी पर आएगा, है ना? रफ्तार धीमी हो जाएगी।
एकदम सही, रफ्तार धीमी होगी, दिशा बिगड़ सकती है, और जो पुरुष रूपी पहिए की शक्ति है, वो भी उस कमजोर पहिए का भार ढोने में ही बेकार चली जाएगी, उन्नति तो रुक ही जाएगी।
तो मतलब ये सिर्फ बराबरी का नहीं, बल्कि पूरे समाज की एफिशिएंसी, उसकी कार्यक्षमता का सवाल है।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ।
और वो आगे बढ़कर उन देशों का उदाहरण भी देती हैं जिन्हें हम आज प्रगतिशील मानते हैं।
अच्छा, क्या कहती हैं उनके बारे में?
वो इशारा करती हैं कि देखिए, जहां समाज आगे बढ़ा है, वहां अक्सर आपको दिखेगा कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, योगदान दे रही हैं।
हाँ, ये बात तो दिखती है।
तो उनका निष्कर्ष बहुत साफ है, बहुत सीधा है। अगर हमें सचमुच तरक्की करनी है, वास्तविक प्रगति चाहिए, तो नारी को साथ लेकर ही चलना होगा। उसे पीछे छोड़कर या उसे कमजोर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करना
वो एकांगी प्रयास होगा, अधूरा, कभी सफल नहीं हो सकता।
बिल्कुल, एकांगी प्रयास सफल नहीं हो सकते, प्रगति हमेशा अधूरी और असंतुलित रहेगी।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि वंदनीय माताजी के नजरिए से देखें तो समाज हो, राष्ट्र हो या पूरी दुनिया हो, उसकी प्रगति के लिए स्त्री की भूमिका सिर्फ सहायक की नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, केंद्रीय भूमिका है, सेंट्रल रोल है। उनकी सक्रिय, शिक्षित, सम्मानित भागीदारी,
इसके बिना सच्ची उन्नति, सच्ची प्रगति हो ही नहीं सकती।
एकदम सही कहा आपने।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है।
क्या सवाल?
वंदनीय माता जी ने बार बार सुसंस्कृत, सुविकसित नारी की बात की, परिष्कृत पारिवारिक वातावरण की बात की। ये शब्द आज भी बहुत मायने रखते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आज का जो समय है, जो माहौल है, जो इतनी तेजी से बदल रहा है,
बिल्कुल,
इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में इन शब्दों का व्यवहारिक रूप क्या हो, आज के कॉन्टेक्स्ट में सुसंस्कार, सुविकास, परिष्कार का मतलब क्या है, वो कौन से गुण है, कौन सी वैल्यूज है जिन्हें अपना कर व्यक्ति, परिवार और समाज सब मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ सके।
ये वाकई गहरा सवाल है। आज के दौर में इन आदर्शों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत।